आगे है बयान उल फराश, बिस्तर का बयान, मसला 270। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया और बिस्तर दोनों दबागत किए हुए चमड़े के थे, जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह का तकिया, जिस पर आप रात को नींद फरमाते थे, दबागत किए हुए चमड़े का था, जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो तकिया आप लेते थे, लेकिन बहुत लग्जरियस तकिया नहीं होता था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह का बिस्तर चमड़े का था, जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। और आप जानती हैं खजूर के पत्ते कितने सख्त होते हैं, जब सूखते हैं तो बिल्कुल एक झाड़ सा बन जाता है। तकिए का इस्तेमाल मुस्तहब है। हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि मैंने नबी सल्लम को देखा कि आप तकिए के साथ टेक लगाए हुए थे। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया। तो कहना चाहिए कि बिला वजह ऐसी चीज़ों को तकवा से नहीं जोड़ना चाहिए। तकिया लेते हैं तो ये नेकी नहीं होंगे, ये तो बड़ी अजीब बात है। बिला इजाज़त किसी का तकिया इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, नबी अकरम ने फरमाया, यानी इजाज़त नहीं है और कोई आदमी दूसरे की जगह इमामत ना कराए और ना ही इजाज़त के बगैर किसी की मसनद पर बैठे। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया। अब यहाँ तकिया किधर है, मसनद, नीचे जो फ्लोर कुशन है ना, उसकी बात हो रही है। रेशम के बिस्तर, गद्दे, तकिए वगैरह बनाने जायज़ नहीं, चाहे आप बेटी के जहेज के लिए बना रहे हैं, नहीं बना सकते। हज़रत खुज़ैफ़ा कहते हैं, नबी अकरम ने हमें सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया। आसान होता जा रहा है ना जहेज बनाना, हमने पता नहीं क्या महंगी महंगी चीज़ें जमा की हुई थी। फिर रेशम और दीबाच, यानी बारीक रेशमी कपड़े की उम्दा किस्म पहनने से और इस पर बैठने से मना फरमाया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ज़रूरत से ज़ायद बड़ाई और शोहरत की खातिर बिस्तर बनाना मना है। मसलन कैसे, बेटी को जहेज में कितने दिए हैं? आप में से कई सिस्टर्स ऐसी होंगी जिनको शादी में 25 से 30 बिस्तर मिले थे, हाथ खड़ा करें, तो ना समझी है। और लंदन जैसे घर में जब आप आई होंगी तो एक भी नहीं, दो भी नहीं साथ ला सकी होंगी, सारे ही उधर रह गए हैं। कईयों की माँ ने अभी भी पेटियों में संभाल के रखे होंगे कि जब बेटी पाकिस्तान मूव होगी ये फिर बिछाएगी। बहरहाल, हज़रत जाबिर से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक बिस्तर मर्द के लिए, एक बिस्तर बीवी के लिए और एक बिस्तर मेहमान के लिए काफ़ी है। चौथा मुराद है ज़रूरत से ज़ायद शैतान के लिए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। पीछे इस पर डिटेल से बात हुई थी। बिस्तर पर लेटने के बाद सोने से कबल दर्जा सेल दुआएं मांगना मसनून है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के वक्त अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपना हाथ दाएं रुखसार के नीचे रखते, यानी दाएं साइड से मुराद ये कि लेफ़्ट ऊपर है, जैसे ऐसे ना, ऐसे कि आपकी लेफ़्ट साइड पूरी ऊपर आएगी, और फरमाते, आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। या अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता, यानी सोता और जिंदा होता हूँ, यानी जागता हूँ। और जब जागते तो फरमाते, पढ़िएगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मैं मरने से, यानी सोने के बाद जिंदा कर दिया, यानी जगा दिया, और मरने के बाद इसी के हजूर हाजिर होना है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का इरादा फरमाते तो दायां हाथ रुखसार के नीचे रखते और तीन मरतबा ये कलेमात पढ़ते, दोहराते हैं, अल्लाहुम्मा किनी अज़ाबक यौमा तब आसु इबादक। ए अल्लाह, जिस रोज़ तो अपने बंदों को उठाएगा, इशारा है क़यामत की तरफ, कब्रों से उठाए जाने का दिन, उस रोज़ मुझे अपने अजाब से बचाए रखना। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। कितनी प्यारी दुआ है, तो इनको याद कीजिए और आदत बनाएंगे याद करने की और पढ़ने की, तो याद हो जाएंगी। तीसरी दुआ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पे जाए, यानी मुराद है सोने के लिए, तो पहले अपने तहबंद के कोने से बिस्तर को झाड़े, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि बिस्तर पर क्या पड़ा है। आपको पता है कि कच्चे घर थे, खजूर की चाल थी, कोई कीड़ा कोई जानवर आ सकता है, तो बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। फिर ये दुआ पढ़े, आप भी दोहराएंगे मेरे साथ इस दुआ को, बिस्मिका रब्बी वदातु जम्बी वबिका अरफाउहू इन अमसकता نفسی فرحمها
وإن
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، تیرے نام سے بستر پر لیٹتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا، اگر تو نے میری جان اپنے پاس روک لی تو اس پر رحم فرمانا. کس احساس کے ساتھ سو رہے ہیں کہ اٹھنا کوئی نہیں، اور اگر واپس بھیج دی تو اس کی ویسے ہی حفاظت فرمانا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اسے اب بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب اگلی بڑی پیاری دعائیں، اور آپ کو بھی سے بتاؤں کہ یہ دعائیں ہم نے ایک بک پڑھی تھی اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، مطلب ریسنٹلی ہم نے پڑھا تھا، اس میں سے یہ ایک حدیث ہے. اور واقعی اتنا آسان عمل ہے، پر برا ہو اس شیطان کا جو سونے سے پہلے وضو کرنا ہمیں دنیا کا مشکل کام کروا دیتا ہے. دیکھیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے، وہ شخص جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یہ دعا مانگتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ فرشتے کی دعا ہے، آپ بھی دہرائیں، اللہم اغفر لعبدک فلانن فإنه بات طاہرا. اے اللہ، اپنے اس بندے کے گناہ معاف فرما، یقیناً وہ طہارت کی حالت میں سویا تھا. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. فرشتوں کی دعائیں لے رہے ہیں آپ. ہم اپنے جیسے گناہگاروں کو کہتے ہیں دعائیں کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، پتہ نہیں ان کی قبول بھی ہونی ہے کہ نہیں، تو وہ نیت کرتے ہیں آج سے ارادہ کریں وضو کر کے سوئیں. کوئی کہتا ہے لے وضو کیا تو پھر وہ تو سوتے ہی ٹوٹ جائے گا، تو وہ آپ کو کیا لگے؟ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ جاگ رہے تھے. رات کو وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر پر سونے والے شخص کے بیدار ہونے پر مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی حدیث بہت پیاری ہے، یہ حسن المسلم میں بھی دعا موجود ہے انشاءاللہ. حدیث کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ مسلمان حالت طہارت میں ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے تو بیدار ہونے پر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی رات میں آنکھ کھل جاتی ہے، کروٹ بدلی، آنکھ کھل گئی. کتنا پیارا دین ہے. سوتے میں بندے کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عموماً کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. سوتے سے پہلے یہ دعائیں پڑھ لیجئے تو آپ کی نیند بھی عبادت بن جائے گی.